डॉक्टर डेविड इमानुएल, सत्र 2, निर्गमन भजन 78। 2024 डेविड इमानुएल और टेड हिल्डेब्रांट। यह निर्गमन स्तोत्रों पर अपने शिक्षण में डॉक्टर डेविड इमानुएल हैं। यह सत्र संख्या 2 है, भजन 78, भगवान ने डेविड को चुना। अब इस वीडियो में हम भजन 136 से आगे बढ़ते हैं, जो निर्गमन भजन के भजन में अंतिम था। हम वापस जा रहे हैं और भजन 78 को देखकर भजन के क्रम का पालन करने का प्रयास करेंगे, जिसका मैंने शीर्षक दिया है, और भगवान ने डेविड को चुना। यह भजन 78 है। यह भजन संहिता में दूसरा सबसे लंबा भजन है। बहुत से लोग जानते हैं कि स्तोत्र में सबसे लंबा स्तोत्र कौन सा है। आप इसे 119 के रूप में पहचान सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि दूसरा सबसे लंबा भजन कौन सा है। इसलिए यदि कोई आपसे प्रश्नोत्तरी में यह पूछता है, तो आप यह जानने का दावा कर सकते हैं। यह भजन 78 है, जो निर्गमन रूपांकन को समर्पित है, जो दूसरा सबसे लंबा है। हमने देखा कि भजन 136 को एक धार्मिक ढांचे में स्थापित किया गया था, जिसे किसी प्रकार के समारोह, किसी प्रकार के उत्सव में एक साथ सुनाया जाना था। यहाँ हमें एक भजन मिलता है, जो ज्ञान ढांचे में स्थापित है। जैसा कि हम परिचय को देखते हैं, आपको कई शब्द और बहुत सारी ज्ञान शब्दावली दिखाई देगी, जो निश्चित रूप से हमें नीतिवचन और सभोपदेशक की पुस्तक जैसे साहित्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। यहाँ भजनहार ने कालानुक्रमिक क्रम का त्याग किया है। कालानुक्रमिक क्रम एक ऐसी चीज है, जिसे हमने बाइबल साहित्य, आम तौर पर साहित्य की व्यवस्था में मार्गदर्शक शक्ति के रूप में अपने दिमाग में बैठा लिया है। लेकिन यह कुछ ऐसा है, जिसके बारे में प्राचीन लोग निश्चित रूप से कम चिंतित थे। उनके लिए एक बात सिखाना, एक संदेश सिखाना, लोगों को अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना, ईश्वर को जानना अधिक महत्वपूर्ण था। ये वे पहलू हैं, जिनसे वे अधिक महत्वपूर्ण थे। यदि इसका मतलब यह है कि उन्हें कालानुक्रमिक क्रम का त्याग करना होगा, तो ऐसा ही होगा। जब तक लोगों को यह संदेश मिलता रहा कि वे क्या सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक वे ऐसा करने में प्रसन्न थे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे आम तौर पर बाइबल साहित्य पढ़ते समय आपको अपने दिमाग में सबसे आगे रखना होगा। सिर्फ इसलिए कि एक्स वाई के बाद आता है, इसका मतलब यह नहीं है कि कालानुक्रमिक रूप से यह उस विशेष तरीके से घटित हुआ। इस स्तोत्र का एक जटिल पुनर्लेखनात्मक इतिहास है, जिसका अर्थ यह है कि इस स्तोत्र की कई परतें हैं कि इसे विकसित किया गया था, और आज हमारे पास जो संस्करण है, वह संभवतः पहला संस्करण नहीं है, जो मूल रूप से लिखा गया था। अब आप भजन में सुधारात्मक परतों की पहचान कैसे करते हैं? यह व्याख्यान की इस विशेष श्रृंखला के लिए नहीं है, बल्कि यह कुछ ऐसा है, जिसे कई विद्वानों द्वारा पहचाना गया है। हमारे उद्देश्यों के लिए इसका मतलब यह है कि भजन में निश्चित रूप से दो स्तर हैं, जो दो अलग अलग संदेशों की ओर इशारा करते हैं। इसकी संरचना के दो अलग अलग बिंदु हैं। उनमें से पहला है इतिहास से सीखना। इसलिए जैसे ही हम स्तोत्र पढ़ते हैं, आप लोगों को यह सिखाने की दिशा में एक बहुत मजबूत आंदोलन देखेंगे कि यह याद रखना कितना महत्वपूर्ण है कि आपके पूर्वजों ने क्या किया है, और वही गलतियां न दोहराएं। यह कुछ ऐसा है, जिसे हम भजन पढ़ते समय देखेंगे। यह इसके अंतर्गत एक प्रमुख विषय है। दूसरा डेविड और यहूदा का चयन है। हम पाते हैं कि भजन के अंत में, जैसा कि हम एक पल में भजन की संरचना को देखेंगे, और आप देखेंगे कि भजन के भीतर ही इन दो बिंदुओं पर कैसे जोर दिया गया है। लेकिन डेविड और यहूदा का चयन मूल रूप से मंदिर और पवित्र शहर यरूशलेम की स्थापना के लिए इज़राइल के दक्षिणी राज्य का चयन है। यह भी कुछ ऐसा है जो सिखाया जाता है और एप्रैम की अस्वीकृति है जो इसराइल के उत्तरी राज्य का प्रतीक है। तो हम भजन के भीतर इन दो पहलुओं को देखते हैं और यह इसके भीतर के कथा प्रवाह को एक तरह से अस्पष्ट कर देता है। लेकिन अगर आप इन दो बातों को ध्यान में रखें तो आपको इसका कुछ अर्थ निकालने में सक्षम होना चाहिए। तो आइए संरचना पर एक संक्षिप्त नजर डालें। संरचना पर एक बहुत ही संक्षिप्त नजर डालें। महत्व 1-8, भगवान के कार्यों का वर्णन करना, भगवान के कार्यों का स्मरण करना। यह कुछ ऐसा है जो भजन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उस पहले संदेश के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह याद करते हुए कि भगवान ने इसराइल के लिए क्या किया है, विशेष रूप से उनके चमत्कार। फिर हमें 9-11 में एप्रैम की बेवफाई का पता चलता है। हम इसके बारे में थोड़ा और बात करेंगे क्योंकि एप्रैम की धारणा जनजाति से उत्तरी साम्राज्य, उत्तरी जनजातियों की ओर थोड़ा बदल जाती है। एप्रैम बहुत बड़ा और प्रभावशाली था। उस जनजाति के कई सदस्य थे और इसलिए अक्सर इसराइल के उत्तरी साम्राज्य को एप्रैम के नाम से जाना और संदर्भित किया जाता था। फिर हमारे पास परमेश्वर की दयालुता के विरुद्ध इसराइल की अविश्वासिता के बारे में पाठों की एक श्रृंखला है। यह इतिहास और निर्गमन की विभिन्न घटनाओं की एक श्रृंखला है जिसमें इसका गहन अध्ययन किया गया है। भगवान कर्म करने से दयालु होते हैं। इसराइल विद्रोह से जवाब देता है। ईश्वर दयालु है और उन्हें उस हद तक सजा नहीं देता है, लेकिन वह उन्हें सजा देता है, लेकिन फिर वह उन पर दयालु होता है। वह उनके प्रति दयालु है और वे उसके विरुद्ध विद्रोह करते हैं। यह एक गायन है और वह विचार या वह पैटर्न उस विशेष गायन में चलता है। फिर हमारे पास भजनहार का सारांश है, लगभग 34-41 तक, जहां भजनकार मूल रूप से इस बिंदु पर जोर देता है। केवल उदाहरणों का उल्लेख करना पर्याप्त नहीं है। यह हमेशा महत्वपूर्ण होता है कि आप स्पष्ट शब्दों में बताएं कि आपका मुद्दा क्या है और यहाँ क्या हो रहा है। इस विचार को हम दृष्टांतों में देखते हैं। जब यीशु कोई दृष्टांत सुनाते हैं तो वे केवल दृष्टांत का उल्लेख नहीं करेंगे, बल्कि बार बार कहेंगे, इसलिए ऐसा मत बनो, तो ऐसा मत करो। तो आप उदाहरण देते हैं, लेकिन फिर आप स्पष्ट होना सुनिश्चित करते हैं कि आप स्पष्ट हैं और वही कहते हैं जो आपकी बात है। फिर हमारे पास भगवान की दयालुता के आलोक में वफादारी का दूसरा पाठ है। यहां हम विपत्तियों की ओर बढ़ते हैं। इसमें से अधिकांश विपत्तियों और इसराइल में प्रारंभिक प्रवेश के कारण हैं। यह दूसरा गायन यहाँ पहले वाले के समानांतर है। आप यह भी देखेंगे कि चूंकि यहाँ इस पाठ में विपत्तियों का उल्लेख किया गया है, विपत्तियां जो समुद्र और जंगल की परंपरा के विभाजन से पहले हुई थीं, तो भजनहार के लिए यह उदाहरण यहाँ है। भले ही यह कालानुक्रमिक रूप से इससे पहले है, वह इसे रखता है, वह क्रम को उलट देता है और यह कोई समस्या नहीं है क्योंकि यही वह बिंदु है जिस पर वह जोर देना चाहता है, यही वह दिशा है जिसमें वह वहीं जाना चाहता है। फिर अंत में एक निष्कर्ष है जो एप्रैम और यहूदा की अस्वीकृति है और डेविड ने भगवान की जिम्मेदारियों को लेते हुए इसराइल के लिए यहूदा को भगवान के चरवाहे के रूप में चुना। अब इस स्तोत्र में, इस संरचना में कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं। उनमें से एक यहाँ यह केंद्रीय स्थिति है और हम देखेंगे कि इसे दो गायनों द्वारा कोष्ठक में रखा गया है, फिर इसे एप्रैम के उल्लेख द्वारा पुनः कोष्ठक में रखा गया है। मैं इसे बाहर निकाल सकता हूँ। इसे चियास्टिक कहा जाता है, लेकिन सख्ती से कहें तो यह बिल्कुल वैसा नहीं है, लेकिन हम इसे अन्यत्र भी देखेंगे। तो हम इस विशेष मामले में देखेंगे, आप ए बी में देखेंगे, आपके पास एक्स होगा और फिर आपके पास बी होगा और फिर आपके पास यहाँ ए होगा। तो आपके पास यहाँ ये संबंधित पद होंगे, फिर ये संबंधित पद यहाँ होंगे। यह एक्स आमतौर पर वह है जिसे हम एक सशक्त स्थिति, एक सशक्त स्थान कहते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां आपके संदेश का हृदय या उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा सहेजा जाता है और यह भजन के उस विशेष हिस्से के लिए आरक्षित है। हमारे लिए यह विद्रोह और निरंतर पाप की घटनाओं का भजनकार का सारांश है जिसे हम यहां पाते हैं। तो यह एक बात है जो हमें याद रखनी होगी। स्तोत्र में दूसरी या अन्य बहुत महत्वपूर्ण जोरदार स्थिति अंत में आती है। अक्सर भजनहार और केवल भजनकार ही नहीं, हम इसे बाइबल के गद्य में भी पाते हैं। जब वे कोई बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं तो उसे अंत तक छोड़ देते हैं। इसलिए जब आप उस रचना को पढ़ना समाप्त कर लेते हैं तो वही स्वाद आपके पास रह जाता है। इसलिए वे इसे सशक्त बनाना चाहते हैं, वे इसे बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं। तो आप उस महत्वपूर्ण संदेश के साथ जा रहे हैं जिसे वे चित्रित करना चाहते हैं। अच्छा, तो आइए कुछ अलग अलग हिस्सों पर नजर डालें। हम यह सब देखने में सक्षम नहीं होंगे। यह बहुत लंबा भजन है, समय सीमित है, इसलिए मैं कुछ अनुभागों से कुछ लेने जा रहा हूं। मैं भजन के भीतर ही कुछ दिलचस्प बिंदुओं को देखना चाहता हूं। हम यहां इस अभिव्यक्ति के साथ शुरुआत करते हैं, मेरे निर्देश को सुने। यह उन वाक्यांशों में से एक है जो हमारे पास हैं, जो विचार से जुड़ते हैं, वाक्यांशों से नहीं। मान लीजिए यह उन व्याख्याओं में से एक है जो हमारे पास हैं, जो ज्ञान की धारणा से जुड़ते हैं। मेरा उपदेश सुनो जो प्रथम श्लोक में आता है। मुझे खेद है, मैंने वास्तव में इसे वहां नहीं रखा है। इस विशेष स्थान में निर्देश के लिए शब्द हिब्रू शब्द टोरा है। हम इसे श्लोक एक में पाते हैं जिसके बारे में मैंने कहा था कि वास्तव में मैंने इसका वहां उल्लेख नहीं किया था, लेकिन टोरा निर्देश के लिए शब्द है। अब यह ज्यादातर लोग हैं, जब आप उनसे पूछते हैं टोरा शब्द का क्या अर्थ है, पहली बात जो वे कहते हैं वह यह है कि इसका मतलब कानून है, लेकिन हमें हर समय इसका अनुवाद इस तरह नहीं करना चाहिए। अक्सर ज्ञान साहित्य में हम पाते हैं कि टोरा शब्द का अनुवाद निर्देश के रूप में किया जाता है। टोरा में हमारे पास जो अर्थ है उससे शायद यह बेहतर अर्थ है। यह मार्गदर्शन के बारे में है, यह नेतृत्व करने के बारे में है, यह किसी को उस तरीके से निर्देश देने के बारे में है जिसमें उन्हें जाना चाहिए, वे जा सकते हैं। तो यह पहला संकेत है जो हमें इस विशेष स्तोत्र में ज्ञान साहित्य का मिलता है। लेकिन हमें अन्य उदाहरण भी मिलते हैं। मैंने पहले बताया था, मैं ज्ञान साहित्य की पहचान कैसे करूं? शब्दावली द्वारा। हमारे पास ये वाक्यांश और अभिव्यक्तियां हैं। हमारे पास स्तोत्र है, प्रारंभिक स्तोत्र, शीर्षक को मास्किल कहा जाता है। एक मास्किल जड़, सेकल, पाप, कफ, लंगड़ा से होता है। वह मूल है जिसका अर्थ है बुद्धि, समझ, बुद्धिमत्ता। इसके इस प्रकार के अर्थ हैं, ओह मुझे इसे बदलने दीजिए, वह सेकल है, मेरा मतलब है हालांकि यह एक पाप है, इसके बारे में खेद। तो यह एक ऐसा शब्द है जिसका तात्पर्य ज्ञान से है। लेकिन हमारे पास नीतिवचन 4.5 और 5.7 में पाए गए मेरे मुंह के शब्दों के लिए ये अभिव्यक्तियां भी हैं। यह एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसका प्रयोग नीतिवचनों में अक्सर किया जाता है। श्लोक 2 में हमें कहावत शब्द मशाल मिलता है। मुझे खेद है कि अब मेरे पास वह बात यहां नहीं है, लेकिन यह एक और शब्द है जो अक्सर ज्ञान साहित्य में उपयोग किया जाता है। मशाल एक छोटी सी कहावत, एक सूक्ति जो पाठक को सीख देती है। हमारे यहाँ भी यह शब्द है चिड़ा, जो एक पहेली है। यह इसे समझने का एक तरीका है। लेकिन एक बार जब हम कविता की दुनिया में जाते हैं, तो हमें शब्दों के अर्थों को लागू करने में हमेशा बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यदि कोई भजनकार कहावत शब्द का प्रयोग एक भाग में, एक आधे में, एक कोलन में, क्रम में करता है, इसे संतुलित करने के लिए उसे एक और शब्द की आवश्यकता है जिसका समान अर्थ हो। इसलिए वह चिड़ा शब्द चुन सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि हमें शुद्ध अर्थों को समझना होगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये दोनों संबंधित शब्द हैं और वह एक का इस्तेमाल दूसरे को संतुलित करने के लिए कर रहा है। यह बाइबल की समानता में घटित होता है। फिर यह हिब्रू कविता पर कोई पाठ्यक्रम नहीं है, इसलिए मैं बहुत अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको जागरूक होना होगा। हमारे यहाँ दोहराव है जो घटित होता है, और यही मैं आपको इस विशेष स्लाइड में दिखाना चाहता था। हम बताने और निर्देश देने के विचार को विभिन्न तरीकों से दोहराते हुए देखते हैं। हमारे पास है, हमारे पिताओं ने हमें बताया है, यह वहाँ कहता है, उन्हें सिखाने के लिए और उन्हें बताने के लिए। यह पूरे भजन में दोहराया गया है। हमारे यहाँ बालक, 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 इन छंदों में चार बार का विचार भी है। मेरे पास 3 से 7 तक श्लोक हैं। इसलिए इस छोटे खंड में, अपेक्षाकृत छोटे खंड में, हमारा जोर बच्चों को पढ़ाने पर है। यह कुछ ऐसा है जैसा कि हम आम तौर पर भजन पढ़ते हैं। हमें इसके बारे में बहुत बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है। यदि हम विचारों को दोहराते हुए देखते हैं, तो इसका मतलब है कि भजनकार इस बात पर जोर दे रहा है कि हम इस विशेष बात को सुनें कि यह उसकी पूरी रचना में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो हमारे पास वह पुनरावृत्ति है, और हमारे पास श्लोक 4 में यह शब्द निफ्लोट भी है, भगवान, शक्ति और उनके चमत्कारिक कार्यों की स्तुति करो। यहाँ इसका अनुवाद इस तरह किया गया है, लेकिन वह फिर से हिब्रू है, निफ्लाउट, उस शब्द पेले पर वापस, जिसे हमने भजन 136 में देखा था, जिसका मूल रूप से मतलब है कि यह एक कार्य है, एक ऐसा काम जो वास्तव में एक आदमी से भी बड़ा हो सकता है। यह एक चमत्कारिक शब्दावली है। मैं आगे भी कहूंगा कि कई बार जब हम इस विशेष प्रारूप में शब्द पाते हैं जो एक निफ्लोट कृदंत है, तो इसका मतलब विशेष रूप से पलायन है, पलायन में हुए चमत्कार, चाहे वह विपत्तियां थीं, चाहे वह विभाजन था समुद्र, चाहे वह भोजन की व्यवस्था हो, इन सभी को निफ्लोट के रूप में गिना जाता है, ऐसी चीजें जो मनुष्य के लिए बहुत बड़ी हैं। फिर हमारे पास अगला खंड है, एक बहुत ही अनोखा खंड, एक बहुत ही अनोखी सामग्री जो एप्रैम की बेवफाई से संबंधित है। ऐसा प्रतीत होता है कि पाठ किसी रहस्यमय घटना के बारे में बात कर रहा है जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते हैं। एप्रैम के पुत्रों, किसी स्तर पर बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो विशेष रूप से इसके बारे में बोलता हो। वे युद्ध के दिन वापस लौट आते हैं। वे युद्ध के एक दिन में पीछे हट जाते हैं और यह ईश्वर के नियमों को मानने या उनका पालन करने से इनकार करने के संबंध में है। बाइबल में इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है, तो हमें यह सवाल पूछना शुरू करना होगा कि यह कहां से आता है। इसकी संभावना नहीं है कि उसने ये बातें अपने भजन में फिट करने के लिए बनाई हों। वह एक ऐसा काम बनाने की कोशिश कर रहा है जो उसके समकालीनों को पसंद आएगा या कुछ हद तक समझ में आएगा। तो यह कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में वे जानते हों और वह इसके बारे में जानता हो, इसलिए वह इसका संदर्भ दे सकता है। इसलिए इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह एक प्राचीन परंपरा से निपट रहा है जिसे हमने पवित्र शास्त्र में दर्ज नहीं किया है। मुझे उस धारणा को समझाने के लिए कुछ समय देना चाहिए। हम जानते हैं कि बाइबल लिखी जा चुकी है और जाहिर तौर पर इसमें एक ऐतिहासिक काल, एक विशाल ऐतिहासिक काल, कुछ हजार साल शामिल हैं। यह अक्सर सोचा जाता है या यह सोचना आसान है कि बाइबल के भीतर हमने सभी ऐतिहासिक परंपराओं को समाहित कर लिया है और इसके आसपास कुछ भी नहीं चल रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल के आसपास कई अन्य परंपराएं थीं, उनमें से कुछ उन घटनाओं के समानांतर हैं जिन्हें हमने दर्ज किया है, जो बहुत समान हैं, लेकिन बिल्कुल समान नहीं हैं। आसपास ऐसी कई चीजें थीं जिनके बारे में हर कोई जानता था। अक्सर भजनहार, कवि, बल्कि अन्य बाइबल लेखक भी इनमें से कुछ परंपराओं का सहारा लेते हैं। अब वे कभी नहीं जानते थे कि ये अन्य परंपराएं पवित्र लिपि में स्पष्ट नहीं होने वाली थीं। इसलिए वे इनमें से कुछ अन्य परंपराओं को चित्रित करने और छूने में सक्षम थे। यदि आप नए नियम के बारे में सोचते हैं तो हमारे पास थॉमस के सुसमाचार में वह है जो हमारे बाइबल में नहीं है, लेकिन यह एक और सुसमाचार था जो लिखा गया था, जिसके बारे में लोगों को यहूदा के सुसमाचार में पता होगा। हमारे आसपास ये चीजें हैं, इसलिए यह पूरी तरह से अपरिचित विचार नहीं है। तो इस मामले में ऐसा प्रतीत होगा मानो कई लोग सोचते हैं कि एप्रैम से जुड़ी एक परंपरा है जो बाइबल में नहीं है। अब यह पता लगाने या खोदने के लिए कि ये अन्य परंपराएं कहाँ दिखाई दे सकती हैं, टारगम्स एक अच्छी जगह है। टारगम्स प्रारंभिक रब्बी लेखन और प्रारंभिक यहूदी साहित्य भी दूसरे मंदिर काल से हैं। वे स्थान हैं जिन्हें देखने के लिए हमें जाना होगा यदि हमें इसकी प्रतिध्वनि मिलती है। तरगुम स्तोत्रों में हम इसका उल्लेख यहाँ पाते हैं, जब वे मिस्र में रह रहे थे, ये इसराइली हैं, जब वे मिस्र में थे, एप्रैम के पुत्र अभिमानी हो गए। उन्होंने नियत समय की गणना की और गलती कर दी। उन्होंने गलती की, वे नियत समय से 30 वर्ष पहले ही बाहर चले गए, इससे पहले कि मूसा ने उनका नेतृत्व किया। युद्ध के हथियारों और धनुष धारण करने वाले योद्धाओं के साथ वे पलट गए और युद्ध के दिन मारे गए। तो हमारे पास एक प्रतिध्वनि है। अब हमेशा यह बड़ा सवाल रहता है कि क्या टारगम स्तोत्र के लेखक, क्या वह उसी परंपरा को प्रतिबिंबित कर रहे हैं जो यहाँ स्तोत्र 78 में दर्ज है, या क्या वह अपना खुद का मिड्रैश बना रहे हैं। वह देखता है कि यह बाइबल में नहीं है और इसलिए वह यह कहानी भी उत्पन्न करता है। अब यह एक बड़ा सवाल है। हम 100% निश्चित नहीं हो सकते, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इस स्तोत्र में प्रतिध्वनित एक और परंपरा की संभावना से अवगत रहें, क्योंकि बाद में स्तोत्र में हम एक और परंपरा के संकेत भी देख सकते हैं। इसलिए हमें इसके प्रति जागरूक रहना होगा। जब हम भजन पढ़ते हैं तो 2 संभावनाएं होती हैं जिनका हमें संज्ञान लेने की आवश्यकता होती है। मैंने यहाँ अन्य उदाहरणों का उल्लेख किया है। मुझे लगता है कि परंपराओं के अन्य उदाहरण भी हैं जो भजन में समाहित होते प्रतीत होते हैं, जो बाइबल साहित्य में स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं हैं। तो पहले पाठ को देखें जो समुद्र को विभाजित करने से शुरू होता है और यह बताता है, उसने समुद्र को विभाजित कर दिया, उसने पानी को ढेर की तरह खड़ा कर दिया। यह केवल शब्दांकन है जो निर्गमन 15:8 को प्रतिध्वनित करता है। हम जानते हैं कि निर्गमन 15 समुद्र का गीत निर्गमन की काव्यात्मक प्रस्तुतियों में अत्यधिक प्रभावशाली था। ऐसा लगता है जैसे भजनहार ने गद्य परंपरा की बजाय एक्सोडस की काव्य परंपरा का उपयोग किया है या उसे अपनाया है। इस पूरे भजन में आप यह भी देखेंगे कि जोर चमत्कारों पर, उन शानदार कार्यों पर है जो भगवान वास्तव में करते हैं, जो वास्तव में बहुत प्रभावशाली होते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जैसे कि ईश्वर इसराइलियों की खातिर ओवरटाइम काम कर रहा है ताकि उन्हें उन चीजों का सही ढंग से जवाब देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके जो वह उनसे पूछ रहा है। फिरौन का क्या? हम इस विशेष भजन में फिरौन के बारे में नहीं सुनते हैं। वह निर्गमन में वापस चला जाता है। भजन 136 में याद रखें, फिरौन को नष्ट कर दिया गया था। उन्होंने इसका उल्लेख किया है। भगवान को इस योद्धा, इस राजा प्रकार की छवि के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन यहाँ यह चमत्कार है। यह ईश्वर का शानदार कार्य है जिस पर जोर दिया जा रहा है। इसलिए हम फिरौन के बारे में नहीं सुनते। हम समुद्र में उसकी सेना के विनाश के बारे में नहीं सुनते क्योंकि यह चमत्कार के बारे में है। यह इज़राइल के भगवान की चमत्कारी शक्ति के बारे में है। हम रोटी के प्रावधान की ओर बढ़ते हैं और हम फिर से इस विचार को देखते हैं, स्वर्ग के दरवाजे का एक और विचार। यह ईश्वर की प्रतिक्रिया, अवज्ञा के प्रति उसकी दयालु प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। मेरा मतलब है, इससे पहले श्लोक 17 से 20 में भजनकार कहता है कि उन्होंने अपने हृदयों में उसे परखते हुए परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। इसलिए भले ही उनके पास उसके चमत्कार के प्रति यह पापपूर्ण प्रतिक्रिया है, भगवान अभी भी दयालु हैं और वह उन्हें रोटी प्रदान करना चाहते हैं। हमारे पास यह है, यह स्पष्ट रूप से मन्ना परंपरा का प्रतिपादन है। एक संख्या 11 में है और दूसरा निर्गमन 16 में है, जो ईश्वर द्वारा रोटी का चमत्कारी प्रावधान प्रदान करने की बात करता है। लेकिन मेरा तर्क है कि इस काव्यात्मक मामले में प्रस्तुति कहीं अधिक है। मैं इसे अतिरंजित नहीं कहूंगा, लेकिन यह अधिक चमत्कारी है। यह अधिक अतिरंजित है। उसने खाने के लिए और उन्हें भोजन प्राप्त करने के लिए उन पर मन्ना बरसाया। जब आप उसे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो वे चल रहे हों और यह मन्ना आसमान से नीचे गिर रहा हो। उन्होंने इसे इसी तरह चित्रित किया है। लेकिन जब हम एक सोडस की कहानी को देखते हैं तो यह कहीं अधिक बुनियादी है। धुंध छा जाती थी और जमीन पर इस तरह का सामान होता था जिसे उन्हें उठाना पड़ता था और विभिन्न काम करने पड़ते थे। तो जिस तरह से यह घटित होता है वह वास्तव में काफी अलग है। तो हमें शक्ति मिल गई है, इस सब में भगवान की महिमा पर जोर दिया जा रहा है। यहां भी हमें यह विचार दिखता है कि कहां है। उसे भगवान पर भरोसा नहीं था। उसने चीजों की बारिश कर दी, उसने स्वर्ग के द्वार खोल दिए। हमें स्वर्ग के दरवाजे खुलने का यह विचार आया है। मैं इस बारे में बस दो शब्द कहना चाहता हूं। बाइबल साहित्य में एक विचार है कि स्वर्ग में दुनिया की धारणा वैसी नहीं थी जैसी हम चाहते थे। लेकिन ऊपर आकाश में अगर मैं इसे बाहर निकालूं तो दुनिया की धारणा ऐसी थी कि यहाँ नदियां थीं और पहाड़ थे और यह दुनिया है और यहाँ यह भूमि है। लेकिन ऐसी धारणा थी कि ऊपर आकाश में कोई ठोस चीज है। वहां कुछ कठोर और ठोस था जिसे हिब्रू में राकिया कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में वे फर्मेंट कहते हैं। यहां यह एक ठोस चीज थी जो कभी कभार खुल जाती थी। यह थोड़ी देर के लिए खुलेगा और इसमें से बारिश होने लगेगी और फिर भगवान इसे फिर से बंद कर देगा। इसी तरह से उन्होंने प्राचीन विश्व को समझा। इसके अलावा यह भी विचार था कि यहाँ ऊपर, इसलिए यदि आप यहाँ वापस जाएं, तो विभिन्न भंडार गृह थे। तो हवा के लिए भंडार गृह थे, बारिश के लिए भंडार गृह थे और इसके अलावा अन्य चीजों के लिए भी भंडार गृह था, प्रावधानों के लिए जो भगवान लोगों को प्रदान करना चाहते थे। तो चीजें प्रदान करने के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले होने का विचार था, स्वर्ग में खिड़कियां। हम इस विचार को 2 राजाओं 7:2 में प्रतिध्वनित देखते हैं, देखो यदि प्रभु को स्वर्ग में खिड़कियां बनानी चाहिए तो क्या यह बात हो सकती है। यह एलीशा के दिनों में पड़े अकाल के संबंध में था। तो उन्हें अंदाजा था कि स्वर्ग में ऐसी खिड़कियां हो सकती थीं जो खुलती और ये सारी आपूर्ति नीचे गिरा देती। हम इसे मलाकी में भी देखते हैं। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है कि अब मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के खिड़कियां न खोलूंगा। तो हमें यह विचार आया कि स्वर्गीय खिड़कियां खुल रही हैं और भोजन नीचे आ रहा है। वे धारणाएं जिनके बारे में भजनहार को स्पष्ट रूप से पता होगा, हम इसराइलियों के साथ इस विशेष स्थिति में लागू होते हुए देखते हैं। इस भोजन से संबंधित एक और चीज मन्ना है, जिसका वर्णन अपेक्षाकृत अजीब तरीके से किया गया है। मैंने संख्याओं की पुस्तक में पहले उल्लेख किया था, मन्ना यह एक प्रकार का प्राकृतिक बीज है। यह एक अवशेष है। यह कुछ ऐसा है जो जमीन से आता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कुछ ऐसा है जो प्रशंसनीय है, कुछ ऐसा है जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। तुम जमीन से उठाते हो और उसे पकाते हो, तुम उसे कुचलते हो, तुम उसे भूनते हो, तुम उसके साथ जो चाहो करते हो। संख्याओं में इसे इसी प्रकार समझा जाता है। भजनहार के लिए यह इससे भी अधिक हो जाता है। यह लगभग एक दिव्य भोजन बन जाता है और इसे भोजन, दिव्य भोजन, स्वर्गदूतों की रोटी के रूप में वर्णित किया जाता है। उसने उनके लिए स्वर्ग से भोजन अर्थात स्वर्गदूतों की रोटी भेजी। और यहाँ यह धारणा है या कम से कम एक परंपरा के संकेत हैं कि जो खाया जा रहा है वह वही भोजन है जो देवदूत खाते हैं। तो एक सुझाव है, वहाँ एक परंपरा है कि स्वर्ग में वे भोजन खाते हैं और यह इस आपूर्ति से है। यह स्वर्गीय भोजन है जिसे हम भगवान को मनुष्य को देते हुए पाते हैं। स्वर्गदूतों का भोजन मनुष्य को दिए जाने का यह विचार हम इसे फिर से देखते हैं। तारगम स्तोत्रों में इसका उल्लेख है और संकेत भी। मनुष्यों के पुत्रों ने वह भोजन खाया जो स्वर्गदूतों के निवास से आया था। उसने उन्हें सैटी के पास प्रावधान भेजे। हम यहाँ इस विचार को देखते हैं, लेकिन हम एलिजा के साथ भी यही विचार देखते हैं। जब एलिया ईजेबेल से भाग रहा होता है तब वह जंगल में भागकर एक झाड़ू के पेड़ के नीचे गिर जाता है और कहता है, मुझे मरने दो, मुझे मरने दो, हे प्रभु मुझे मरने दो। और फिर उसे जगाया जाता है और एक देवदूत आता है और उसे रोटी के साथ यह देता है। वह यह रोटी लेता है और वह यह रोटी खाता है। यह उसे सिनाई पर्वत तक पूरे रास्ते संभाले रखता है। तो स्वर्गदूतों का भोजन मनुष्यों के लिए आने का यह विचार, एक धारणा, एक परंपरा प्रतीत होता है जो भजनकार के दिनों के दौरान था और इसे इस विशेष बिंदु पर यहीं पर लागू किया जा रहा है। इसके बाद जो मांस की व्यवस्था होती है वह संख्या की दृष्टि से परंपरा के अनुरूप ही अधिक लगती है। हमने यहाँ हवा और पूर्वी हवा दोनों का उल्लेख किया है जो जिस दिशा से आती है उसके साथ संशोधित होती है। लेकिन हमें इस विशेष समय में बटेर लाने वाली हवा का भी विचार है। तो इस मामले में दोनों के बीच बहुत अधिक समान शब्दावली नहीं है, लेकिन संकेत बिल्कुल स्पष्ट है कि वह कहाँ से आ रहा है। लेकिन हम एक चूक भी देखते हैं क्योंकि हमारे पास ये सभी मामले हैं। हमारे पास भोजन की व्यवस्था है लेकिन सिनाई में देने के कानून का उल्लेख नहीं है। नहीं मरियम और हारून का मूसा के विरुद्ध विद्रोह है। इनमें से किसी का भी किसी प्रकार का उल्लेख नहीं मिलता। वे भजनहार की योजना का हिस्सा नहीं हैं। भजनकार के लिए उसका मुख्य शत्रु या मुख्य संघर्ष पूरे इज़राइल राष्ट्र या यहाँ तक कि इज़राइल जनजाति और स्वयं ईश्वर के बीच होता है। तो यह एक भजन है जहाँ भगवान के दुश्मन को किसी भी अन्य लोगों या राष्ट्र के विपरीत लोगों इज़राइल राष्ट्र के रूप में अधिक उपयुक्त रूप से वर्णित किया गया है। भजनहार का सारांश मैंने पहले इसका उल्लेख किया था। यह इस केंद्रीय स्थान पर है जो बहुत महत्वपूर्ण था। यह एक सशक्त स्थान है, इसलिए वह मूल रूप से इसराइलियों के व्यवहार को संक्षेप में प्रस्तुत करता है, जैसे कि ईश्वर दयालु था। इसराइल ने उसकी उपेक्षा की और उसके विरुद्ध विद्रोह किया। उन्होंने उसे दिखावटी सेवा दी। उन्होंने उसके प्रति पश्चाताप का दिखावा किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे उसके चमत्कारों को भूल गए। उन्होंने यही किया। यदि हम शुरुआत में वापस जाते हैं और बताने और पुत्रों पर जोर देते हैं, तो हम देखते हैं कि उनके चमत्कारों को भूलना उनकी सजा और उनके फैसले में चलने का एक निश्चित तरीका है। तो यह सब एक केंद्रीय भूमिका में फिर से भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी के रूप में किया जाता है। वहां से हम दूसरे पाठ में वापस जाते हैं और यहां यह मुख्य रूप से विपत्तियों से संबंधित है। अब यहां मुझे विपत्तियों की एक सूची मिल गई है, जैसा कि वे निर्गमन में दिखाई देते हैं और जैसा कि वे भजन आदेशों में दिखाई देते हैं। आप देखेंगे कि फर्क है। बहुत सारी विपत्तियां एक जैसी हैं, लेकिन क्रम भिन्न है और स्तोत्रों की संख्या भी भिन्न है। हम बस एक क्षण में उस पर विचार करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले विपत्तियों पर एक संक्षिप्त नजर डालें। हमारे पास खून है जो सबसे पहले है। दोनों प्लेग परंपराएं इसी से शुरू होती हैं, जिसमें भगवान पानी पर वार करते हैं। वह पानी पर प्रहार करता है और पानी खून से भर जाता है। पानी पीने लायक नहीं रह जाता। फिर हमारे पास झुंडों की महामारी है। अब मैं विशेष रूप से झुंडों के बारे में कह रहा हूं जो आते हैं, आप भी देखेंगे, मेंढकों से पहले। तुम्हारे पास खून है, झुंड यहां हैं और झुंड यहां नीचे हैं। मुझे यह कहकर अर्हता प्राप्त करनी होगी कि किस चीज का झुंड। अब हिब्रू बाइबल में, जैसा कि बहुत से लोग परिचित हैं, यहां जिस प्लेग का उल्लेख किया जा रहा है वह वास्तव में आमतौर पर मक्खियां, मक्खियों का प्लेग कहा जाता है। हालांकि हिब्रू शब्द वास्तव में अरोव है, जिसका शाब्दिक अर्थ झुंड है। यह अपरिभाषित है। इसका मतलब जरूरी नहीं कि मक्खियां ही हों। बाइबल के अधिकांश अंग्रेजी अनुवादों में हमें मक्खियां क्यों मिलती हैं? इसका कारण यह है कि वे अपनी व्याख्या सेप्टुआजेंट से लेते हैं, जिसमें कुत्ते की मक्खी पढ़ी जाती है। इसलिए हम इसे वहां देखते हैं। लेकिन यह याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि झुंड का विचार अपरिभाषित है। यहां दिलचस्प बात यह है कि भजनों में वर्णित इन झुंडों में निगलने की शक्ति होती है। उनके पास खाने की शक्ति है और उनके पास उपभोग करने की शक्ति है, जिससे यह पता चलता है कि ये मक्खियां नहीं हो सकती जिनके बारे में वह वास्तव में बात कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि ये वास्तव में वे मक्खियां न हो जिनके बारे में वह वास्तव में बात कर रहा है। जब हम टारगम्स में इसकी एक अलग परंपरा में जाते हैं, जब यह अरोव के प्लेग के बारे में बात करता है, तो यह यही कहता है, मैं तेरे और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा और तेरे घर के बीच में जंगली पशुओं की मिलीजुली भीड़ भड़काऊंगा, और मिस्री अर्थात मिस्र के भवन जंगली पशुओं के झुंड से भर जाएंगे और वे भूमि पर भी रहेंगे। तो यहां टारगम्स में इस यहूदी परंपरा में झुंड मक्खियां नहीं हैं, बल्कि झुंड जंगली जानवर हैं, जमीन पर कब्जा करने वाले जंगली जानवरों का झुंड। ऐसा लगता है कि यह भक्षण करने के विचार के अनुरूप है, क्योंकि यदि आपके पास जंगली शेर, भेड़िये और अन्य सभी चीजें हैं, तो उनके भक्षण करने जैसी क्रिया करने की अधिक संभावना है। तो यह इसे समझाने का एक तरीका हो सकता है। यह परंपरा भी उल्लेखनीय है, अरोव की परंपरा या समझ, जो हमें समकालीन यहूदी साहित्य में भी मिलती है। इसलिए जब मैं इसे देख रहा था, तो मैं वास्तव में इसे देखकर निराश हो गया था। लेकिन पहली बार जब मेरी बेटी ग्रेड स्कूल में थी, वह फसह के दौरान वापस आई। जब उस महामारी की बात आई जिसके बारे में मैं जानता था कि वह मक्खियां हैं, तो यह जंगली जानवरों का एक समूह था। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी यही व्याख्या थी जो ईसाई परंपरा से बहुत भिन्न थी। अगली विपत्ति मेंढकों की है जो एक्सोडस में एक उपद्रव हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास ऐसे मेंढक हैं जिन्होंने उन्हें नष्ट कर दिया, इसलिए वे किसी प्रकार की क्षति पहुंचाते हैं। अब वे किस प्रकार के मेंढक थे, यह जानना बहुत मुश्किल है कि क्या हो रहा है, लेकिन आपको यह भी आश्चर्य होगा कि क्या इसमें रहस्योद्घाटन की थोड़ी सी भी सोच है। क्योंकि अगर हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को देखें, तो मैंने पहले कहा था कि निर्गमन का मूल भाव हर जगह है, लेकिन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हमें बड़े बड़े दांतों वाले अजीब टिड्डियों वाले जानवर मिलते हैं जो लोगों को खा जाते हैं और लोगों को बहुत पीड़ा पहुंचाते हैं। इसलिए हमें विपत्तियों और उनसे होने वाली क्षति के वर्णन में इस प्रकार की अतिशयोक्ति मिल सकती है। तो यह मेंढकों के लिए क्षमता है जो हमारे पास है। फिर हमारे पास टिड्डियों की महामारी है जो यहाँ भजन संख्या 8 में है। फिर क्रम में अंतर और यह सीधे ईश्वर से आता है, वह उन्हें भेजता है। यह एक ऐसे विचार का परिचय देता है जिसे हम निर्गमन भजनों में काफी बार देखते हैं। मनुष्य की भूमिका को अक्सर नीचे धकेल दिया जाता है और भगवान की भूमिका को ऊंचा कर दिया जाता है। वह है जो सीधे तौर पर बहुत सारी विपत्तियां और चमत्कार करता है और हम मूसा और हारून को बहुत कम देखते हैं। इस विशेष भजन में कुछ हद तक दोहराव है। हमारे पास टिड्डियां और युवा टिड्डियां हैं। मैंने पहले उल्लेख किया था कि हम इसका बहुत अधिक उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाइबल की समानता में हमारे पास ऐसे शब्द जोड़े होने चाहिए जो एक दूसरे को संतुलित करें। तो इस विशेष मामले में हमारे पास वह है। फिर हमारे पास ओलों की महामारी है जिसके लिए दो श्लोक समर्पित हैं और यह पौधों और जानवरों दोनों को प्रभावित करता है। आप एक पल में ही समझ जाएंगे कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इस विशेष बिंदु पर हमें श्लोक 47 में ओलों की महामारी मिली है। उसने उनकी बेलों को ओलों से और उनके गूलर के पेड़ों को पाले से नष्ट कर दिया। यह उन जोरदार पैटर्नों में से एक है, एक चियास्टिक पैटर्न। मैं फिर से बोर्ड पर जाता हूं बस इसे योजनाबद्ध करने के लिए। यह मूल रूप से सामान्य हिब्रू समानता इस तरह दिखेगी, ए बी ए एक समानांतर ए और फिर इस तरह एक समानांतर बी, जहां ये दो शब्द मेल खाएंगे। उनके पास एक ही अर्थ संबंधी विमान होगा। तो इस मामले में आप इसके बी भाग में टिड्डियों और युवा टिड्डियों का उपयोग करेंगे। लेकिन यहां इस श्लोक में जो हो रहा है वह यह है कि हम एक सशक्त रूप में चले जाते हैं जिसमें हमारे पास ए और बी होता है और फिर इसे चारों ओर घुमाया जाता है और फिर हमारे पास एक बी और एक ए होता है। यह कुछ ऐसा है जिसे चियास्मस कहा जाता है। मैं नहीं जानता कि अलग अलग लोग इसे अलग अलग तरीके से कैसे संदर्भित करते हैं, लेकिन यह एक सशक्त संरचना है। हम देखते हैं कि इसका उपयोग केवल यही नहीं बल्कि कई अन्य स्थानों पर भी किया जाता है, लेकिन मैं बहस करूंगा और मैं एक अन्य पेपर में बहस कर रहा हूं जो मैं लिख रहा हूं कि यह भजन में, पूरे भजन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियंत्रण संरचना है। अच्छा, आगे बढ़ते हुए हमारे पास यह वाक्यांश है जो एक प्रविष्टि पर आता है, इसलिए वह प्रत्येक प्लेग के लिए एक श्लोक समर्पित करता है। फिर वह इसे दोगुना कर देता है और फिर वह भगवान के ज्वलंत क्रोध के बारे में बोलता है। वह किसी प्लेग के बारे में बात नहीं कर रहा है बल्कि वह आखिरी प्लेग की तैयारी कर रहा है। वह स्वर्गदूतों को नष्ट करने वाले एक गिरोह की बात करता है। उन्होंने अपने गुस्से के लिए रास्ता समतल कर लिया। उसने उनके प्राणों को मरने से न बचाया और उनका जीवन प्लेग के वश में कर दिया। वह यहां यही करता है। यह महामारी है। यहां तो महामारी का प्रकोप है, लेकिन इसके प्रति एक अतिरिक्त तैयारी है, जोर देने के लिए एक नाटकीय तैयारी। हमारे पास कुछ और भी है, जो एक और काव्यात्मक रूप है, जिसे विलंबित पहचान कहा जाता है। क्या हो रहा है कि भजनहार किसी चीज का वर्णन करेगा और उसके बारे में बात करेगा और अंतिम शब्द तक या वाक्य, कविता या वास्तविक खंड के अंत तक इसका विशेष रूप से उल्लेख नहीं करेगा। तो वह आगे बढ़ेगा और वह इसके बारे में बात करेगा और फिर वह अंततः इसका उल्लेख करेगा और इसके बारे में स्पष्ट होगा। इसे विलंबित पहचान कहा जाता है। यह एक हद तक जोर पैदा कर सकता है। हम इसका एक और उदाहरण देखेंगे। इस मामले में यहां उसके क्रोधित होने और स्वर्गदूतों को नष्ट करने का पूरा विवरण है, लेकिन प्लेग स्वयं वह जोर दे रहा है, यह आखिरी तक नहीं आता है। इसका उल्लेख केवल अंत में किया गया है। महामारी की इस विभीषिका में पुरुष भी प्रभावित होते दिख रहे हैं। हालांकि एक्सोडस में यह मवेशियों और जानवरों पर होने वाली प्लेग से अधिक है, लेकिन यह थोड़ा अलग प्रतीत होता है। मैं यहां की विपत्तियों को भी देख रहा हूं। अंधेरा शामिल नहीं है, फोड़े शामिल नहीं हैं और न ही जू शामिल हैं। तो हमने पाया है कि इन दोनों प्रस्तुतियों में ज्येष्ठ पुत्र के प्लेग को अंतिम स्थान प्राप्त है। इसलिए जिसे हम मूल के रूप में जानते हैं, उसमें से कुछ को उसने बनाए रखा है, हालांकि यह है या नहीं यह एक अलग कहानी है। प्लेग पर कुछ सामान्य टिप्पणियां। एक यह है कि हम निर्गमन में सात प्लेग परंपरा बनाम निर्गमन की पुस्तक में दस प्लेग परंपरा देखते हैं। क्षमा करें, स्तोत्र में सात, निर्गमन में दस। मैं कहना चाहता हूं कि दो संख्याएं सात और दस मूल रूप से एक ही हैं, क्योंकि वे दोनों संख्याएं पूर्णता का प्रतिनिधित्व करती हैं। यदि आप इन दो उदाहरणों को देखें कि उनका उपयोग कैसे किया जाता है, तो इजरायलियों के बीच एक लोकप्रिय अभिव्यक्ति थी जो इस संख्या का उपयोग करती है। उस अभिव्यक्ति का एक उदाहरण यहां एक सैमुअल में मिलता है। अच्छा कर्णस अपने पति से कहती है, उसके पति ने हन्ना से कहा, यह शमुएल की माता है तो क्यों रोती है और भोजन क्यों नहीं करती? तुम्हारा मन उदास क्यों है? क्या मैं तुम्हारे लिए दस बेटों से भी अच्छा नहीं? तो यह एक पूर्ण संख्या है। मैं तुम्हारे लिए दस बेटों से बेहतर नहीं हूं। लेकिन हम रूत में पाते हैं, हमें एक समान या समान अभिव्यक्ति मिली है, जो कोई तुमसे प्यार करता है वह तुम्हारे लिए सात बेटों से बेहतर है। इसलिए हमें पूर्णता का विचार एक मामले में दस और दूसरे मामले में सात में व्यक्त हुआ है। तो यह वास्तव में कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है कि एक परंपरा में यह सात है और दूसरे में दस है। वे दोनों संख्याएं हैं जो एक ही चीज को दर्शाती और व्यक्त करती हैं। क्या गंभीरता बढ़ने का सवाल है? संभवतः। कुछ विद्वानों ने इसके पक्ष में तर्क दिया है। यह देखने में बहुत सामान्य है। पानी में खून का प्रवाह इतना स्पष्ट नहीं है जो वास्तव में किसी को नहीं मारता है। इससे झुंडों को और अधिक असुविधा होती है, लेकिन फिर वे लोगों को खाना शुरू कर देते हैं। इसलिए यहां बहस करना कठिन है। निश्चित रूप से एक बार जब हम महामारी के विचार को समझ लेते हैं, तो इसका जमाव अधिक हो जाता है और हम ईश्वर को अपने क्रोध और अपने स्वर्गदूतों के समूह के बारे में बताते हैं जिन्हें वह उनके खिलाफ भेजने जा रहा है। फिर हम पहले बच्चे की प्लेग पर आते हैं, जो निश्चित रूप से सबसे गंभीर प्लेग है। तो कुछ लोग तर्क देंगे कि गंभीरता बढ़ने का सवाल है। लेकिन जब हम भजन 105 को देखते हैं तो हम देखेंगे, मुझे लगता है कि उस संभावना की एक स्पष्ट तस्वीर है। हमें एक और बात ध्यान में रखनी होगी कि मूसा और हारून भजन की किसी भी प्रस्तुति में दिखाई नहीं देते हैं। जब हम विपत्तियों की अधिकांश प्रस्तुतियों में कविता के बारे में बात कर रहे हैं तो यह ईश्वर ही है जो इसे सीधे तौर पर करता है। वीरतापूर्ण कार्य ईश्वर द्वारा किए जाते हैं और अधिकांश भाग में मनुष्य केवल ईश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, विद्रोह करते हैं और शिकायत करते हैं। यह एक पैटर्न है जिसे हम अधिकांश भजनों में विभिन्न तरीकों से व्यक्त करते हुए देखते हैं। उसके बाद हम ईश्वर को नेतृत्व करते हुए ईश्वर को चरवाहे के रूप में पाते हैं। यह भजन के शेष भाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसने उन्हें आगे बढ़ाया, उसने उनका सुरक्षित नेतृत्व किया, वह उन्हें अपनी पवित्र भूमि पर ले आया। इसलिए परमेश्वर इसराइल का चरवाहा है क्योंकि वह उन्हें रेगिस्तान के माध्यम से मिस्र से बाहर और रेगिस्तान के माध्यम से ले जाता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है। संभवतः इसी कारण से हम परिवर्तन को क्रम में पाते हैं क्योंकि हम पहले ही रेगिस्तान की घटनाओं को देख चुके हैं, लेकिन अब वह इसराइल का नेतृत्व करने वाले ईश्वर के इस पहलू पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वह उनका चरवाहा है। यह मूल रूप से जंगल की गतिविधि का सारांश है, लेकिन सभी पापों, रोटी और अन्य चीजों के लिए भगवान की परीक्षा का विवरण पहले दिया गया था। इसके बाद हमारे पास एक विद्रोह और सजा है जिसके तहत इसराइली एक बार वादा किए गए देश में प्रवेश करने के बाद उन्होंने रेगिस्तान से कुछ भी नहीं सीखा और उन्होंने भगवान के खिलाफ विद्रोह किया। अत वह उन्हें दंड देता है। एक बार जब वे भूमि में पहुंच जाते हैं तो वे परमेश्वर का परीक्षण करना जारी रखते हैं। ये ऊंचे स्थानों और मूर्तियों के सामान्य संदर्भ हैं। ऊंचे स्थान पहाड़ियां थीं जिन पर वेदियां बनाई गई थीं और जहां लोग परमेश्वर के साथ साथ इसराइल के परमेश्वर की भी पूजा करते थे। वे अन्य मूर्तियों और अन्य देवताओं की भी पूजा करेंगे। इसके परिणामस्वरूप ईश्वर अपने लोगों को त्याग देता है और भजन शीलों में विनाश का संदर्भ देता है। यह संभवतः एक शमूएल 4 का संकेत है जिसमें इसराइली वाचा के संदूक के साथ युद्ध करने निकले थे। वे पलिश्तियों से हार गए और पलिश्तियों ने संदूक को चुरा लिया। वे उसे ले गए। यह संभवतः यहां एक संदर्भ है। उसने अपनी शक्ति कैद में छोड़ दी। यहां शब्द ओज है जो अन्य संदर्भों में वाचा के संदूक का सीधा संदर्भ है। तो संभवतः यही वह संकेत है जो हमें यहां मिला है। इससे भी अधिक, यहां आपने उसके पुजारियों को तलवार से मरवा दिया है। यह संभवतः होफनी और फिनेहास के मृत होने का संकेत है। तो वे महायाजक के पुत्रों में से दो एली के पुत्र थे जो युद्ध करने गए और मारे गए। तो हमने यहीं पुजारियों को तलवार से गिरते हुए पाया है। पूरी संभावना है कि यही संदर्भ दिया जा रहा है। तो आपने याजकों होपनी और पीनहास को मरते हुए पाया है, लेकिन फिर आपके पास एक और संदर्भ भी है जो उसकी विधवाओं के रोने में असमर्थ होने का है। इस विशेष स्थान पर हमारे मृत व्यक्ति के बाद हमें पीनहास की पत्नी का उदाहरण मिला है जो शोक मनाने में असमर्थ थी क्योंकि जब वह बच्चे को जन्म दे रही थी तो जन्म देने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए वह शोक मनाने में भी सक्षम नहीं थी क्योंकि वह मर गई थी और उसने जल्दी ही बच्चे को जन्म दिया क्योंकि पता चला कि संदूक ले लिया गया था, उसका पति मर गया था, एली मर गया था और ये सभी चीजें घटित हो गई थीं। इसलिए वह मर गई और शोक करने में सक्षम नहीं थी और उसकी विधवाएं रो नहीं सकीं। तो संभवतः यही इस पूरी घटना का संदर्भ है। तब हमारे पास कुछ है भगवान अपने लोगों को छोड़ देता है। फिर हमारे पास कुछ ऐसा है जो बहुत साहसी कल्पना है। इसमें कहा गया है, तब प्रभु मानो नींद से जाग उठे। तो सवाल यह है कि सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि शराब से इस पर काबू पाया जा सकता है। तो यहां तस्वीर वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति की है जो न केवल गहरी नींद में है बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो नशे में है और पूरी तरह से शराब के नशे में है। परिणाम स्वरूप ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन जैसा कि हम पवित्र शास्त्र से जानते हैं, जैसा कि हम कुछ स्थानों पर जानते हैं, भगवान सोते नहीं हैं। भजन 121:4 कहता है कि जो इसराइल का रक्षक है वह न ऊंघेगा और न सोएगा। वह एक छवि है जो हमारे पास है, जो बाद में है। लेकिन निश्चित रूप से उससे पहले राजशाही के दिनों में, प्रारंभिक राजशाही में सोते हुए देवता की धारणा थी। ऐसी धारणा थी कि भगवान, कम से कम लोगों को तो यही लगता होगा कि वह सोए थे। तो हमारे पास ऐसे अंश हैं जहां यशायाह कहता है, जागो जागो, ताकत रखो, हे प्रभु की भुजा। वह कह रहा है, वह वास्तव में भगवान से कह रहा है, पुराने दिनों की तरह उठो और कुछ करो। हम यहां भजन 44 में भी देखते हैं एक स्पष्ट उदाहरण, स्वयं को जागृत करें। हे प्रभु, तुम क्यों सोते हो? हमें हमेशा के लिए अस्वीकार मत करो। तो यह एक धारणा है जो हमारे पास है, या एक धारणा है जो बनाई गई है कि भगवान सो रहा है और उसे प्रार्थनाओं और मध्यस्थता और चिल्लाने और जो कुछ भी है उसके माध्यम से एक बार फिर से कार्य में लाने की आवश्यकता है। यह वह छवि है जो हमारे यहाँ है, सोते हुए देवता की, जो जागता है और फिर वह अपने लोगों इसराइल की रक्षा के लिए आता है। यहाँ हमें अपना चरम अंत मिला है जिसमें मैंने कहा था, हमने जानकारी को आगे बढ़ाने के पहले महत्वपूर्ण भाग का उल्लेख किया है। अब हम दूसरे भाग पर आते हैं, दूसरा महत्वपूर्ण भाग जो एप्रैम का अस्वीकार है। एप्रैम को अस्वीकार कर दिया गया है। उत्तरी साम्राज्य और उत्तर के लोगों को भगवान के पवित्र शहर और पवित्र तंबू के आवास के लिए भी नहीं चुना गया है, इसलिए एप्रैम को अस्वीकार कर दिया गया है। इसके बजाय यहूदा को मंदिर के लिए चुना गया है। यह जनजाति लगभग यहूदा का वह स्थान है जहां यरूशलेम में वास्तव में मंदिर बनाया गया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप चाहें तो डेविड को भगवान के नेता के रूप में चुना गया है। यहां याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे स्तोत्र में किसी भी व्यक्ति के नाम का छूट जाना स्पष्ट है। हमारे पास मूसा नहीं है, हमारे पास हारून नहीं है, हमारे पास वास्तव में नहीं है, मैं इसे फिरौन के बारे में बताने जा रहा हूं, नामों का उल्लेख नहीं है। तो अचानक हम यहां डेविड नाम देखते हैं। यह एक बड़ी बात है क्योंकि अब भजनहार इस विशेष व्यक्ति के महत्व को प्रकट कर रहा है। उसे प्रकट करने से कहीं अधिक, यदि आपको कुछ स्लाइड याद हो तो हमने देखा कि ईश्वर इसराइल का नेतृत्व कर रहा था, उनके चरवाहे के रूप में उनका मार्गदर्शन कर रहा था। लेकिन अब यह ऐसा है जैसे ईश्वर ने इसराइल का नेतृत्व और मार्गदर्शन करने की बागडोर अपने हाथ में ले ली है और वह उन्हें डेविड को सौंप देता है। इसमें कहा गया है, वह उसे याकूब को चराने के लिए लाया, इसलिए उसने उनकी चरवाही की और उनका मार्गदर्शन किया। यह सब नेतृत्व और मार्गदर्शन की भाषा है जो कभी भगवान की थी, लेकिन अब यह डेविड के पास चली गई है और भगवान का आदमी बनना उसकी जिम्मेदारी है। इतना कहने के साथ आइए इस भजन को कुछ बिंदुओं के साथ समाप्त करने से पहले संक्षेप में बता दें। सबसे पहले भजन 78, यह लंबा है। मैं जानता हूं कि मैंने इसके साथ न्याय नहीं किया है। ऐसा करने में कुछ और सप्ताह लगेंगे, लेकिन यह इज़राइल के लिए भगवान के चमत्कारों पर केंद्रित है। लोगों पर कम, परंतु ईश्वर की चमत्कारी शक्ति पर अधिक। यह उनकी अच्छाई के प्रकाश में, उनकी मदद करने के लिए ऊपर और परे जाने के प्रकाश में, इज़राइल के विद्रोह पर भी ध्यान केंद्रित करता है। वे उसके विरुद्ध विद्रोह करते हैं। वे उसकी महान शक्ति के अनुरूप उचित कार्य नहीं करते हैं। फिर दूसरा जोर अतीत से सीखने पर भी था। इस अर्थ में, जैसा कि मैंने पहले कहा, यह ज्ञान परंपराओं से जुड़ा था जिसे आप इससे सीखेंगे। कुछ चूक टोरा देने का दोबारा उल्लेख नहीं किया गया है। मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा क्यों लगेगा जैसे कि विद्रोह के बारे में बात करने के लिए एक अच्छा उदाहरण होगा, क्योंकि जब वे मूसा के पहाड़ से नीचे आने की प्रतीक्षा कर रहे थे तो उन्होंने हारून से यह सुनहरा बछड़ा बनाया, लेकिन इसका उल्लेख नहीं किया गया है। हमारे पास भजन में टोरा शब्द का भी उल्लेख है, लेकिन यह टोरा देने की घटना है। कानून देने निर्दिष्ट नहीं है। एक व्यक्तिगत विद्रोह, इसलिए दातान और अबीराम के विद्रोह, इनका भी उल्लेख नहीं किया गया है। यह मुख्यतः एप्रैमी और इसराइली हैं जो परमेश्वर के साथ युद्ध करते हैं और उसके शत्रु बन जाते हैं। मैं एक और चीज का भी उल्लेख करूंगा, वह है खोई हुई परंपराओं के संकेत, स्वर्गदूतों की रोटी और युद्ध में पीछे हट जाने पर एप्रैमियों का पीछे हटना। बाइबल साहित्य में हमारे पास इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं है। तो ऐसा लगता है, और कम से कम मेरे विचार में, तथ्य यह है कि हमारे पास इस विशेष स्तोत्र की प्रारंभिकता की ओर ये अन्य परंपराएं संकेत हैं। मैं इस मामले में डेटिंग में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि इसके बारे में बहुत विवाद है, लेकिन मुझे लगता है कि यह इस विशेष भजन की प्रारंभिकता, प्रारंभिक प्रकृति, प्रारंभिक अनुभव का संकेत देता है। तब हमारे पास ईश्वर की उन्नति है। मूसा और हारून अनुपस्थित हैं।
सेवेंटी एट। Seventy-eight.